नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभुदेयं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रामचरितमानस के सभी प्रसंग बहुत सुंदर है। तुलसीदास जी महाराज ने भाव से प्रसंग लिखे और भगवान का ध्यान करते हुए लिखे हैं, परंतु अब जो प्रसंग आ रहा है इसको तो तुलसीदास जी ने बहुत सावधानी से लिखा है। एक तो अयोध्या कांड ही सावधानी से लिखा है, अयोध्या कांड में लिखने में भी सावधानी और चौपाइयों में भी सावधानी, छंद में भी सावधानी, सोरठा में भी सावधानी, विषय वस्तु में भी सावधानी। तो भाई मंथरा ने केकई को खूब अच्छा पाठ पढ़ा दिया और केकई को भवन में चली गई। इधर अयोध्या में किसी को कुछ पता तो है नहीं, सब बहुत आनंदित हो रहे हैं। आ कल राजगद्दी पर राम जी बैठेंगे, आपस में लोग मिलते हैं। राम जी के महल में राम जी के बचपन के साथी बड़े उत्साह से आते हैं जाते हैं, भगवान आदर के साथ उनको पहचान करके उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। ओहो, इस संसार में रघुवीर के समान कौन हमारा प्रिय है जो अपना प्रेम निभा सके, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। और लोगों की इतनी इतनी बातें कानों में, ये केकई के कानों में आ रही है, वो भी देख रही, बड़ा उल्लास हो रहा है महलों में। तो केके सुता हृदय अति दाहू, केके के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि को न कुसंगति पाय नसाई रह न नीच मति चतुराई। कोई आदमी नीच आदमी के साथ मिल जाए फिर उसकी चतुराई रह सकती है क्या? बड़ा आदमी चतुर है सा, पर संग संग तो बड़ा खराब है, तो बस अब उसकी चतुराई नहीं रहेगी। खराब संग को पा करके ऐसा कौन है जिसने नाश नहीं किया? अब ये बात क्यों कही? इसलिए कही कि अब इतने चतुर, इतने श्रेष्ठ हैं हमारे दशरथ जी महाराज, इतने पवित्र हैं, परंतु आज कुसंग मिल गया। किसका? केकई का। केकई तो पहले भी थी, केकई तो पहले भी थी, दशरथ जी भी पहले ही थे। आज केकई का संग कुसंग क्यों लगता है? कि केकई ने मंथरा का संग कर लिया। मंथरा भी पहले से ही थी, कोई आज नहीं तो नहीं आई, नहीं तो नहीं आई, पर उसका विचार नया आ गया। मंथरा ने आज से पहले कभी केकई के सामने ऐसी अगड़म सगड़म बातें की नहीं, जब से आई तब से। देखो रानियों की जो ये दासियां होती थी, सेविकाएं होती थी, ये कोई बहुत अच्छी रूप रंग की नहीं होती थी। ये कायदा था रनिवास में, रानी है उसकी सेवा शुश्रूषा करने वाली सब ये बेडोली होती थी। ऐसी ये मंथरा थी, सेवा हरदम करती, पास में रहती, पर कभी भी कोई ऐसी बात ही नहीं किया। पहली बार आज हुआ, क्योंकि सरस्वती वहां आ गई। अब सरस्वती अपनी जगह पर घूम रही है कि अभी एक मंथरा से पार नहीं पड़ेगी, तो केकई तो अब आएगी चक्कर में। लेकिन एक तरफ केकई मंथरा के संग में गई, और अब एक तरफ केकई राम जी के पिता के संग में, दशरथ जी के संग में आ रही है। सांझ समय सानंद नृपु गयउ केकई गे गवनु निठुरता निकट किया जनु धरि देह सने। अब देखिए राम जी महाराज जी के पिताजी की बात, ये तो है मानो स्नेह की मूर्ति और केकई है निठुरता की मूर्ति, कठोरता एकदम। दशरथ जी महाराज बड़े आनंद के साथ केकई के महल में गए। अब यहां दशरथ जी का जो प्रसंग आएगा उसमें दशरथ जी की बातों में ये आएगा कि दशरथ जी बड़े स्त्री के प्रेमी थे, पर ऐसी बात है नहीं। दशरथ जी की बातों से पता चलेगा कि दशरथ जी महाराज का राम में कितना प्रेम था। यदि स्त्री में प्रेम था भी तो वो राम के प्रेम के सामने कुछ भी नहीं था। यदि दशरथ जी का प्रेम स्त्री में बहुत ज्यादा होता तो वे राम के वनवास के समय में दशरथ जी इतने व्याकुल नहीं होते। इस प्रसंग से ये लगता है कि कोई संसार में कितनी भी आसक्ति रखे, प्रेम रखे, मोह रखे, स्त्री पुत्र आदि में उलझा हुआ भी हो, तो भी भगवान के प्रेम की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो वो समाप्त हो जाएगी चीजें। अब बहुत ध्यान से सुनना। दशरथ जी महाराज जब केकई के महल में गए तो वहां तब वो बड़े आनंद के साथ जा रहे थे। जब पता चला कि केकई कोप भवन में गई हुई है तब उनको पैर आगे सिरकते नहीं है। कोप भवन, मेरी प्राण प्रिया केकई कोप भवन में, आज तक जीवन में कभी मुझसे कठोर वचन नहीं कही, अप्रियता की बात ही नहीं रही, आज पहली बार में ही क्या सुन रहा हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े देवता लोग जिसके भुजाओं के बल की इच्छा रखते थे कि दशरथ जी का हमको आश्रय मिले, बड़े बड़े राजा लोग दशरथ जी का रुख देखा करते थे, दशरथ जी महाराज का ऐसा तेज और प्रताप था कि सब लोगों के हृदय पर वो छा जाता था। वे दशरथ जी महाराज आज अपनी पत्नी की नाराजगी की बात सुनकर के सूख गए, उनका तेज गायब हो गया। क्यों हुआ कि सुनो, देखो काम प्रताप बढ़ाई, ये काम का प्रताप है। तो आगे ना, दशरथ जी तो बड़े कामी थे, ये चलते रहो। अभी गोस्वामी जी महाराज बहुत चतुराई से बात कह रहे हैं। कुलिस सूल कुलिस असी अंगवानी आ रहे, अरे जिनके शरीर के ऊपर सूल लग जाते थे और वज्राघात भी हो जाता था, असी माने तलवारों की घाव भी वो अंगवानी आ रहे अपने अंगों पर खूब सहन कर लेते थे, वे आज कामदेव के बाणों से मारे गए, अर्थात काम के वशीभूत हो गए। क्या हुआ भाई, केकई क्यों चली गई कोप भवन में? धीरे धीरे दबे दबे पैरों से कोप भवन के पास गए तो उनको और डर लगा। कोप भवन के बाहर जो है ये भूमि शयन बटु मोट ये रत्न डाले हुए हैं, और पास में गए तो मोटा मोटा कपड़ा पहना हुआ और भूषण ऐसे आभूषण यही वहां भी बिखरे हुए। उसकी कुवेशता है, केकई की जो कुवेशता है, खराब जो उसका वेश है, वो ऐसा उसके ऊपर फब रहा है कि जैसे ये थोड़े दिनों में विधवा होने वाली है। कुमति कसी कुवेशता फाबी अन अहिवात सूच सूच जनु भावी, ये भविष्य में जल्दी ही विधवा होने वाली है ऐसी सूचना मिल रही है। राजा पास में गए, डरते डरते प्रेम की वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, तुम क्यों रुसानी हो गई हो, क्या कारण है? वो जब हाथ लगाकर बात करते हैं बड़े प्रेम से तो हाथ का झटका लगा देती है, और मानव सरोस भुवंग भामिनी विषम भांति निहार रही, और जैसे कोई सर्पिणी होती है वो रोष में आई हुई हो, ऐसे वो सर्पिणी के समान टेढ़े नजरों से देखती है और लंबी लंबी सांस लेती है। अब सर्पिणी तो हो गई, कहते हैं सर्पिणी की तो जीभ होती है, दांत होते हैं वो, कि दौ वासना रसना, उसके अंदर जो दो वर मांगने की वासना है वही उसकी जीभ है। सर्पिणी की जीभ या सर्प की जीभ है ना, यूं होती है जीभ, अंदर जाती है बाहर जाती है, तो उसके अंदर ये वासना है कि क्या करूं, ये वरदान है, कब मांगू, कैसे मांगू, क्या मांगू, स्थिरता नहीं आ रही है। जैसे जीभ यूं ऐसे दो वासना रसना, और दसन बर, और सांप के दो दांत होते हैं, तो दांत क्या है, वो साक्षात वरदान ही दांत है। वरदान मांगने की वासना तो जीभ है, और वरदान है वो दांत है। और मर्म ठाउर देख रही, और वो देख रहे हैं कि कोई बढ़िया सा हमको जगह मिले तो डसे हूं, ऐसे जैसे सर्पणी होती है ऐसी वो है। तुलसी नृपति भवतव्यता, बस इधर राजा भी बिचारे क्या करे, भवतव्यता बस आगे जाने क्या होने वाला है, जैसी होना रहे उसके वशीभूत हो गए। और काम कौतुक लेख है, अब वे काम का प्रताप देख रहे हैं। अब देखिए राजा काम में नहीं है, राजा समझ रहे हैं कि केकई के अंदर कामना है, तो केके अंदर कामना है ही, केके में क्या कामना है कि मेरे दो वरदान चाहिए, पर दो वरदानों का पता नहीं है। को भवन में आई तो जरूर इसके मन में कोई कामना है, अब वो और बात समझ रहे हैं, इसके मन में और बात है। तो अब दशरथ जी महाराज बार बार बोलते हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे पिक बचनी, हे गजगामिनी, क्या बात हुई आज, तुम इतना कोप क्यों कर रही हो, मुझे सुनाओ तो सही क्या बात हुई। अब देखो ये सुमुखी है, सुलोचनी है, पिक बचनी है, गजगामिनी है, ये जो एक प्रेम के शब्द दिए हैं, आसक्ति के शब्द दिए हैं, ये शब्द सावधान करने के लिए है कि ऐसे दशरथ जी महाराज थे, वे केकई से ऐसा प्रेम करते थे, पर राम का प्रेम उनके अंदर और मजबूती के साथ था। तो कहने लगे कि देखो आज बताओ मुझे कि तुम्हारा अनहित करके कौन जी रहा है, तुम्हारा अप्रिय करे वो जी जाए, कौन ऐसा दो सिर वाला है कि जो यमपुर में न जाना चाहता हो, वो जाना ही पड़ेगा उसको, बताओ बताओ के कई, कौन ऐसा रंग है जिसको आज राजा बनाना है, कौन ऐसा राजा है जिसको देश से निकाला देना है, मैं क्या बताऊं, सकौ तौर अरि अमरऊ मारी, तेरा यदि शत्रु कोई देवता भी है, अमर है तो भी उसको मैं मारूंगा। ये बेचारे मनुष्य कीड़े मकोड़े के समान क्या है, इनको हम कुछ नहीं समझते, तुम तो मेरे भोले स्वभाव को जानते ही हो ना, मैं तुम्हारे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर बना हुआ हरदम उसका चिंतन करता रहता हूं। सुनो सुनो, देखो केकई मेरी, मेरा प्राण है, मेरे पुत्र है, ये सब बस जो कुछ भी है वो सब तेरे वश में है। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, क्या बात है, इतनी नाराज क्यों हो, मैं यदि तुमको कुछ भी कपट बना करके झूठी झूठी बात कहूं तो मुझे राम जी की 100 बार राम जी की सौगंध है, मैंने जो कुछ कहा है दिल खोल करके सच्ची बात कही है, हंस करके मांगो, प्रेम से मांगो, कोप भवन में क्या मांगते हो, कोप भवन कोई मांगने की जगह होती है, जो अच्छे अच्छे आभूषण पहनो, अपने को सुंदर बनाओ, और घड़ी दो घड़ी तुम अपने खूब अच्छी तरह से विचार कर लो कि क्या मांगना है, और फिर जो है तुम मुझसे मांगो। तो 100 बार राम की सौगंध खाई ना उसने, 100 बार भामिनी राम सपत सत मोई, तब वो यह सुनी मनी गन सपत बड़ी, इतनी बड़ी शपथ मन के अंदर गनी गुनी माने समझ करके हंसी हुई, और हंस करके अपने वहां से सब आभूषण है अपने शरीर पर लगाने लगी वापिस अपने अपने जगह पर। ऐसा लगने लगा कि जैसे किसी मृग को फंसाने के लिए कोई किराती है कोई भिल्लनी है वो एक नया फंदा डाल बना रही हो, ऐसे कोई फंदा हो रस्से का वो यूं बनाती हो, ऐसे वो अपना आभूषण वगैरह सब लगा रही है। राहुल राजा ने देखा हाँ ये तो राजी हो गई मेरे से। राजा हाँ अब तुम अच्छी लगी हो, बोलो बोलो क्या मांगना चाहती हो। अरे पहले तुम मांगने की बात छोड़ो, पहले मेरे दिल की बात सुनो। रात दिन जो तुम मुझे बोला करती थी और जो तेरे मन में बात थी आज उसको पूरा करने का समाचार तुझे सुना रहा हूं। सुनो सुनो केकई, ये जो जितने घर घर में आनंद से नगारे बज रहे हैं, ये जो नाच गान की ध्वनि हो रही है, ये जो तुताड़ियां बज रही है, ये सब इस बात की है कि केकई कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। सो कपड़े पहनो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, श्रृंगार करो, ये आभूषण सामने पड़े इनसे अपने को सजाओ, कितना मांगलिक अवसर है। दनकी उठे वो सुनी हृदय कठोर। अब केकी का वो चेहरा एकदम कैसे ही हो गया, ऐसे हो गया जैसे कोई बाल तोड़ हो जाए और वहां पर एक फुंसी हो जाए और फुंसी पर टक्कर लगे कितना दर्द होता है, ऐसे केकी के हृदय में बड़ी टक्कर सी लगी। बड़ी चतुर थी, बहुत होशियार थी, मंत्रा ने ऐसा उसको सिखाया था, ऐसे वो पीर ऐसी भयंकर उसके मन में पीड़ा है कि जिस राम के अभिषेक के लिए तो मैं नाराज हूं वही बात ये मुझे सुना रहे, तो पीड़ा तो बहुत हुई पर ऊपर से खूब प्रेम से हंसी। ऐसे वो पीर बियसी तही गोई, अपनी पीड़ा को तो छिपाया और हंसने वाह वाह समाचार तो आपने बहुत अच्छे सुनाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जैसे चोर की पत्नी होती है वो सबके सामने नहीं रोती कि मारो धनी चोर लुच्चो है लफंगो है मारो धनी एडो है, ऐसी बात नहीं कहोगे। क्यों कहे यूं कहे तो और बदनामी हुए, मायने मायने धमीड़ा लेवे पर बारू कहीं नहीं कहे। यही केकई है जो मायने तो मायने बड़ी मसोजरी है, ऊपर सुहास है राजा लाई भोड़ो डालो बिन भी कपटतार उठा नहीं, क्योंकि केकई ने तो कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाइयो, करोड़ों करोड़ों कुटिल कुटिल जो आदमी होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ और उनका श्रेष्ठों में जो गुरु मंथरा उसके पास में इसने पढ़ाई की है केकई ने, तो वो केकई क्या समझेगी, दशरथ जी को क्या समझेगी। वो राजा यद्यपि नीति में बड़े निपुण थे परंतु नारी का जो चरित्र होता है वो तो सागर के समान बड़ा अगाध होता है, उसके हंसने पता नहीं है कि कितनी तीक्ष्णता है और उसके रोने में पता नहीं है कि कितनी प्रसन्नता है, कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। बंबई आदि शहरों में सुना कि कहीं किसी के घर में मौत हो जाती है तो रोने वाले नहीं मिलते तो किराए के लाते हैं रोने वाले, घूंघटा कान लेते हैं और ऐसे रोते हैं जैसे इनके घर में कोई मर, कितना घर में प्रेम है और एक आंसू नहीं आता हृदय से, कौन ऐसी चीखती हैं पछाड़ती हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो उसको लाश ले जाते हैं थोड़ी देर रो रुआ करके, हाँ बाबू पैसा लाओ, फटाफट पैसा ले जाते हैं। यदि नीति निपुण नर ना हो नारी चरित्र जल निधि अबका हो, कपट सने बड़ाई बहोरी बोली भियसी नयन मुंह मोरी। इतना जल्दी उसने अपने चेहरे पर हाव भाव दिखाए, बड़ी हंसी और आंख से आंख मिलाने लगी और बोलने लगी मांगू मांगू पे पियो कहूं। आप देखो प्राणनाथ मांग मांग तो आप बहुत बार बोलते हो लेकिन कभी आपने हमको कुछ देने लेने के लिए कहा, हमको तो केवल दो वरदान के लिए आपने कहा था, वो वरदान में हमको संदेह हो रहा है आपके व्यवहार से इसलिए आज हमको कोप भवन में आना पड़ा। बात है और मुस्कुरा रही है साथ, उसकी मुस्कुराहट में इतनी कड़वाहट है इतनी निष्ठुरता है क्या करें। पर राजा को बिचारे को पता नहीं, बोला डाला राजा, मांगू मांगू पे कहू पिय कबहू न देहू न लेव, देन कहू बरदान दोई तेउ पावत संदेह। मुझे दोनों वरदान मिलने में संदेह हो रहा है, इसलिए मेरे से तो ऐसा नहीं लगता कि आपने मांगूंगी राब दे दोगे। हाँ अच्छा अच्छा, राजा हंसे। जब वो मुस्कुरा करके और यूं नयन मुंह मोड़ी, आंख थोड़ा और बना करके मुंह को मोड़ करके ऐसे बोली ना कपटता से, राजा हंसने लगे। राजा ने देखा, अरे ये तो मजाक कर रही है। तो हंसते हंसते बोला राजा, आओ तुम्हें भी तुम्हें कोहाब परम प्रिय है। अरे तुमको तो एक कुछ कहने का बहाना मिल गया, उपालंब देवे ये बहाना मिल गया। तुम्हारे दो वरदान सुरक्षित है, तो हमने कहा कभी तुमने मांगा क्या? तुमने तो कहा कि थाती पड़े धरोहर में पड़े, कभी मांग लेंगे। आज तक तुमने मांगा नहीं, तुमने मांगा नहीं। और मैं भोले स्वभाव का आदमी, मैं तो भूल गया भाई। हमारे को देखो झूठा दोष मत दो, तुमने मांगा तो है नहीं, आज मांगा है तो बाबा दो की जगह चार ले। दुई की चार मांगी मकुले हो, दो की जगह चार ले, खूब आनंद ले साथ में। और देखो हम रघुकुल के अंदर रहने वालों की एक रीति है कि प्राण चले जाए पर कभी हमारे वचन नहीं जाते हैं, और वचन की हम इतनी कीमत करते हैं, कोई असत्य के समान संसार में कोई पाप नहीं होता। एक थोड़ा सा गुंजा का फल होता है वो कोई पर्वत के समान थोड़ी हो सकता है। गिरिसम होए कि कोटि का गुंजा, एक गुंजा है गुंजा, वो करोड़ों हो जाए तो पर्वत के समान थोड़ी हो सकते हैं। ऐसे ही सत्य के समान कोई चीज नहीं होती। सब पुण्यों में मूल सत्य है, सत्य नहीं है और अच्छे काम करते हैं कुछ कोई फायदा नहीं। वेदों में पुराणों में तो यही बात है। और मैं तो राम जी की सौगंध खा के बोल रहा हूं ना, क्योंकि मेरे दिल में तो सब पुण्यों की सीमा राम, सब सुखों की स्नेह की सीमा राम है। राम से बढ़कर मेरे लिए संसार में कुछ नहीं है। मैं तो राम की सौगंध खा के बोल रहा हूं तुमको। तो वो बहुत हंसी, केके बहुत हंसी, बात दृढ़ाए, राजा को खूब मजबूत कर दिया और खूब हंसने लगी। बात दृढ़ाए कुमति हंसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जनु खोली, खराब विचार रूपी एक खराब पक्षी है। सबसे खराब पक्षी होता है बाज, यूं खाता है यूं पशु। तो उस बाज के, बाज रूपी पक्षी के आंखों के ऊपर से जैसे कोई पट्टी खोल दी हो, ऐसे केकई ने अब अपने वचन मांगने की तैयारी की। राजा का तो जो मनोरथ था कि राम को राज्याभिषेक करे, तो राजा का मनोरथ रूपी एक बड़ा सुंदर जंगल है, और जितना जो आनंद है सुख, जो आनंद है वो सब सम अच्छे पक्षी हैं। उसके अंदर ये शिकारिणी भीलिणी के समान है केकई, और उसके जो वचन है वो है बाज के समान, जाकर के सीधे सब पक्षियों को खा जाएंगे। ऐसे वो मुंह बना करके और राजा को बोलने लगी, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, आपने हमको दो वरदान देने के लिए कहा है, हे प्राणनाथ मेरे मन भावते वरदानों में पहला वरदान सुनिए। देखो मांगने में कितनी केकी समझदार है, केकी की समझदारी देखो कि भरत का जब वरदान मांगा छोटे से मांग लिया, क्या कि सुनऊ प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बर भरत ही टीका, भरत को तो राज तिलक दे दो। माने भरत का राज तिलक इतना मुख्य नहीं है केके के। अब राम जी का वरदान राम जी के लिए मांगती है ना, कैसे बोलती है, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरुबऊ नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, चौदह बरस, रुक जाती है, रुक जाती है। आखिर माँ है वो, राम को गोद में खिलाया है, राम को खूब चूमा है, राम को छद दूध पिलाया है, खिलाया है। और राम जी ने ही कहा था कि देख माँ, मुझे इस अयोध्या में तत्वतः जानने वाला कोई नहीं, एक तू है। मेरे लिए वनवास मांगना हो, मेरे लिए राजगद्दी होने लगे तो वनवास मांगना। के ने कहा ठीक है। तो भरतऊ टीका साहब कोई खास बात नहीं, लज्जा तो आनी चाहिए भरत के टीका मांगने में, कोई लज्जा नहीं है। भरतई टीका छोटे से भी मांग लिया। अब जो है उसके मन में स्नेह भी उमड़ रहा है, और राम जी को वनवास भेजे भी कैसे, भेजना भी है। तो बोलती है रुकती है, बोलती है रुकती है, मांगो दूसर बर कर जोरी। वो सोचती है अभी भी कोई बात बन जाए, अभी भी बात बन जाए, राम की जगह दूसरा नाम आ जाए। मांगो बर कर पुनि कर जोरी, मैं आपसे दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांगती हूँ। हे मेरे प्राणनाथ, आप मेरे उस मनोरथ को पूरा करना। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों के वेश में और विशेष प्रकार से उदासी बना करके 14 बरस तक, इतने पर भी उसको अब आखिर बोलना ही पड़ा, बोलना ही पड़ा, न चाहते हुए भी बोलना पड़ा राम वनवासी। कितना केकी का कलेजा टूटा होगा उस समय, कितना केकी ने धैर्य रखा है। देखो बोलती बोलती रुकी है, 14 बरस सब पहले बोल दिया। क्यों बोली भाई 14 बरस? कभी नहीं कहा इसने, मंथरा ने, कि तुम जो है 14 बरस का वनवास मांगो, ऐसा कभी नहीं कहा। मंथरा ने कभी नहीं कहा कि तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश का नाम ही नहीं लिया और विशेष उदासी ये भी नाम नहीं लिया। उसने तो कहा था कि भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, बस। तो कहां से आई ये बात? केके का हृदय एकदम द्रवित हो गया कि मैं राम को वनवास ही दे दूंगी, राम तो कभी मिलेगा ही नहीं फिर मुझे। एक सीमा माननी चाहिए। अब राम जी ने ये नहीं कहा कि 14 वर्ष का वनवास मांगना, ये नहीं कहा था। राम जी ने भी कहा कि मेरे लिए वनवास मांगना। ऐसे समय में सरस्वती आई और केके के हृदय में बैठ गई। उसके कारण से उनको 14 वर्ष हुआ, नहीं तो ऐसी योजना बनाई थी कि राम को सदा के लिए वनवास में भेजना है। केके का दिल नहीं माना कि सदा के लिए वनवास भेज दूंगी, फिर तो मुझे राम कभी मिलेगा ही नहीं, राम के बिना मैं रह भी नहीं पाऊंगी। घबरा गई केके जी, घबरा गई, राम का स्नेह उमड़ गया। यूं सरस्वती ने आई कृपा करके और कहा 14 ऐसा है, उसके वाणी से जाने कैसे निकल गया। जैसे कुंभकर्ण बोलना कुछ और चाहता था और बोला कुछ और गया, ऐसे ही आज देवताओं ने, सरस्वती ने, विधाता ने, सब ने मिल करके केके की जवान के ऊपर 14 की संख्या रख दी। 14 का तो कोई संख्या ही नहीं होती भाई, 10 है, 15 है, कोई के कितने का आदमी थे, 15-20 आदमी थे, 25-30 आदमी थे, एक भी 50-60 आदमी थे, माने 0 और 5 के बीच में ज्यादा संख्या चलती है, 10-15-20-25-50-60 ऐसे बोलते हैं। लेकिन 14 एकदम 15 के निकट आकर के भी 14 बोले हैं, 11 भी नहीं, 13 भी नहीं, 14 बोले, 16 भी नहीं, 14 बरस राम वनवासी। ये 14 बरस का वनवास मांगा, उसमें भी देखो विशेष उदासियों, तपस्वियों का तो वेश बना है, ये तो क्या है बाहर की, बाहर का स्वरूप, और विशेष उदासी है ये अंदर का स्वरूप। अयोध्या के जंगल में यदि राम रह गया तो ये तो है नहीं इसमें। देखो कानून होता है ना, वो एक एक अक्षर तक आकर के विचार करता है। ये नहीं कहा है कि अयोध्या के बाहर जंगलों में जाए, वनवास में जाए तो वन तो अयोध्या के पास में भी है। पर विशेष उदासी जो होते हैं वो विशेष उदासी होते हैं, वो मन से भी किसी से स्नेह नहीं रखते, प्रेम नहीं रखते, उदासीन होते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। तपस्वियों का वेश बना करके राम जी तो अयोध्या के जंगल में भी रह सकते थे, 14 वर्ष निकाल सकते थे, विशेष उदासी। कितना गूढ़ कैकेयी का भाव है कि कहीं राम को पीछे से माँ की याद न आ जाए, पिता की याद न आ जाए, मेरी याद न आ जाए, भरत की याद न आ जाए, और राम यदि दूर जंगल में गए हुए तो वापिस याद न आ जाए। यदि आ गए तो रावण नहीं मरेगा, यदि राम जी आ गए तो कितने कितने प्राणियों का उद्धार होने वाला है 14 वर्ष में, वो नहीं होगा। दशरथ जी की मृत्यु का समाचार भी किसी ने दिया नहीं, चित्रकूट में ही सुना राम जी महाराज ने, अयोध्या की तरफ मुंह नहीं देखा। क्यों? विशेष उदासी। क्या विशेष उदासी में भाव दिए केकेयी ने, तापस विष विशेष उदासी। जो सन्यास लेता है ना वो अपनी जन्मभूमि में नहीं आता, आता है तो गुप्त रूप से आकर के चला जाता है, पता नहीं एक बार आता है वो आकर के चला जाता है। असली सन्यासी, असली जो त्यागी होता है वो। तो राम जी तो ऐसे विशेष उदासी होने चाहिए, उदासी भी नहीं विशेष उदासी, जो केवल एक स्वांग करने के लिए उदासी हो, ऐसे विशेष उदासी हो, नहीं तो उदासी कह सकते थे विशेष उदासी। मानो 14 वर्ष तक विशेष उदासी बने रहे और उदासी का स्वांग बनाए और वापिस यहां जरूर आए, जरूर आए। सुनि मृदु वचन भूप ही अशोकु, राजा के हृदय में बड़ा शोक हो गया। केकेयी तो बहुत समझदारी से बोली है, केकेयी को भी वरदान मांगने के लिए मंथरा की बहुत जरूरत पड़ी, वो भी मंथरा की जरूरत पड़ी है राम जी के कारण से। राम जी कभी मंथरा की गोद में खेले नहीं थे, मंथरा हरदम वहां, लेकिन मंथरा की गोद में न राम जी खेले न भरत जी खेले, क्योंकि बहुत नीच जाति की थी ना, तो रानियां ऐसे ऐसों की गोद में अपने बच्चों को देती भी नहीं थी। कहीं बच्चा दूध पी लेगा, कहीं बच्चे का शरीर का ये स्पर्श करेगी, संस्कार चले जाएंगे कभी। इसलिए मंथरा का न भरत से प्रेम है और न राम से प्रेम है। राम जी भी यही चाहते थे कि यदि ये मेरे से प्रेम करने लग जाएगी तो मेरी राम कथा कैसे होगी। इसलिए मंथरा की गोद में राम जी कभी नहीं रहे। मैं इसकी गोद में रह जाऊंगा तो प्रेम तो इसमें पैदा हो ही जाएगा, इसमें प्रेम उदय जाएगा तो वरदान कौन मांगेगा। इसलिए राम जी मंथरा को देखते भग जाते थे, तुर 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 चले जाते। कभी मंथरा कहती बेटा हो वो चले जाते, भरत जी को भी साथ में लेके भग जाते, ना दूर भगो यहां से। अब उसने बड़े मीठे वचन तो कहे, राजा के हृदय में शोक हो गया। जैसे शशिकर छुअत विकल जिमी कोकू, जैसे चंद्रमा को छूने से कोक को जो है शोक हो जाता है, चक्र को शोक हो जाता है, ऐसे हो रही ये क्या हो गया। वो बहुत सहम गए राजा, और राजा सहम करके ऐसे हो गए, ऐसे हो गए जैसे तमाल वृक्ष के ऊपर बिजली गिरती है तो झुलस जाता है, ऐसे दशरथ जी महाराज विकल होके झुलस गए। अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए, सिर पर यूं हाथ रख लिया, दोनों नेत्र बंद किए, तनुधरी सोच लाग जनु सोचन, ऐसे लगा कि जैसे शोक है वो स्वयं शरीर धारण करके आ गया हो। अरे केकेयी, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष था, वो फूल रहा था, अभी बस फल लगने ही वाला था कि केकेयी तुमने उसको उजाड़ दिया। कीन अचल विपत्ति, दीन्य सी अचल विपत्ति के नहीं, तुमने एक अचल विपत्ति की नींव डाल दी, क्या करो, किस समय में क्या कुछ हो जाए कुछ पता नहीं है, और मैं भी एक नारी के विश्वास में चला गया। जिस प्रकार से योग सिद्धि फल समय जिमी जति अविद्या नाश। अविद्या के नष्ट हो जाने पर योग सिद्धि आदि का, अविद्या के अंदर रहने से योग सिद्धि आदि का फल नष्ट हो जाता है, ऐसे ही तुम्हारे साथ तुम्हारे पर विश्वास करने से मेरा मनोरथ रूपी योग जब सिद्धि सब नष्ट हो गया। राजा ने बहुत विचार किया, वो सोचने लगा क्या करूं। इतने में ही कहने लगी केकी, कहने क्यों क्या हुआ, भरत को राजगद्दी देते हुए आपको इतना दुख हो रहा है? भरत की राउर पूतन हुई, क्या भरत आपका बेटा नहीं है? आने वो मोल बेसाए की मोही, क्या मुझे आपने मोल खरीद करके यहां रखा है? मैं कोई आपकी पत्नी नहीं हूं, एक कोई हूं पैसे से खरीद करके ला करके मुझे रखा है। मैंने मेरे हक के वरदान मांगे हैं, तुमको ऐसा दुख हो रहा है महाराज जैसे बाण लगा हो छाती में, आपसे बोला भी नहीं जाता है। आप तो बोल रहे थे कि हमारे रघुकुल के अंदर सब सत्य संत होते हैं, सब सत्य की रक्षा करने वाले हैं। देह उतर, या तो आप उत्तर देव, साफ कह दो कि ये वचन मैं नहीं माल पाल सकता, तो हम भी कहेंगे कि वाह हमारे यहां सत्य के अवतार दशरथ जी महाराज इस रघुकुल में हुए, जिन्होंने देने की प्रतिज्ञा की है और मांगा तो उन्होंने मुंह सा छिपा लिया। दे न कहूं अब जनि बरु देव, आगे दुनिया जियो तब तक ये मत कहना कि मैं वरदान देता हूं, सत्य को छोड़ दो और अपयश ले आओ। बड़ी बड़बड़ करके बातें कर रहे थे, मांगो मांगो मांगो। आपने सोचा कि कोई चना चबेना मांगेगी? मैं चना चबेना मांगने वाली हूं, मैं मेरी चीज मांगने वाली हूं। सत्य सराय कहू बर देना, जाने ले मांगी चबे ना। शिवी दधीच, कैसे कैसे राजा हुए, शिवी ने अपना सिर शरीर काट दिया, दधीची ने अपना शरीर त्याग दिया, बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। उदाहरण तो उनका भी देते हो, और आज आप एक थोड़ा सा वरदान नहीं देख सके दे सके मुझे? केके ऐसी कठोर वाणी बोल रही है जैसे जड़े के ऊपर कोई नमक छिड़क देते हो, मिर्ची छिड़क दे, नमक छिड़क दे, कितनी जलन होती। वो राजा बेचारे बहुत दुखी हो गए। आगे तो भाई केके दिख रही है ऐसी जैसे कोई क्रोध रूपी तलवार आ गई सामने, और इस तलवार के मूर्खता रूपी उसकी कुबुद्धि है, वो उसकी मूठ है, मूठ तलवार के पीछे मूठ है, वो कुबुद्धि उसकी मूठ है, और कुबरी का जो ज्ञान है वो उसका शान है, उसके ऊपर ये घिस करके बड़ी तीखी है। ऐसे करके वो कठोर शब्दों में बोली। तब महाराज दशरथ जी कहने लगे, ए प्रिय भीर प्रतीति प्रीति करी हाथी, विश्वास और प्रेम इन दोनों की आस तुमने हाथी कर दी, हत्या कर दी। मुझे ऐसा पता नहीं था तुम ये वरदान मांगोगी। अरे केकई, मेरे लिए तो राम और भरत एक एक आंख है, शंकर भगवान को साख करके कहता हूं भरत को राजगद्दी अवश्य दूंगा। राजगद्दी देने के लिए मैं दूत भेजता हूं, भरत और शत्रुघ्न आते हैं, अच्छा दिन देख करके भरत को राजगद्दी पर बैठा देता हूं। राम को कोई राजगद्दी की भूख है नहीं, भरत और राम में कोई अंतर नहीं, राम भी भरत से बहुत प्रेम करते हैं, केवल मैंने अपने रुकुल के अंदर बड़े छोटे का विचार करके ऐसी बात कही थी। मैं तुझे राम की सौगंध खा के कहता हूं कि मुझे कोई कौशल्या ने नहीं सिखाया है, तेरे से थोड़ा अभी पूछा नहीं, इस कारण से मेरे मनोरथ अधूरे रह गए। चलो कोई बात नहीं, अभी तो तुम्हारे और हमारे दो के बीच में बात है, तुम अपना क्रोध दूर करो, मंगल कपड़े पहनो और मंगल ये आभूषण इनको धारण करो, बस भरत को युवराज बनाता हूं। दूसरे वरदान से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरा हृदय जल रहा है, मैं सोच रहा हूं कि तू क्रोध में बोल रही है कि हंसी में बोल रही है कि सच बात है कि क्या है। यदि कोई सच में बोलती है तो बात अलग है, क्रोध में बोलती हो तो भाई अब छोड़ दे, हंसी मजाक करती हो तो समय छोड़ दे, क्यों मैं बहुत घबरा गया हूं। राम का अपराध तो बताओ कि राम का क्या अपराध है। तू खुद बोला करती थी कि राम बहुत अच्छा है, मुझे राम जैसा पुत्र कब मिलेगा। अरे बड़े बड़े शत्रुओं ने भी राम की प्रशंसा की है। हाँ केकई तो मजाक कर रही है, मजाक। तू कभी राम के विरोध में बोल नहीं सकती है, तू माँ है, तू मजाक कर रही है। मेरा हृदय दुखी हो रहा है, जल्दी बोलो प्रिया हास रिस परिहरई। तुम ये क्रोध को और हंसी मजाक को छोड़ो और विवेक पूर्वक दूसरा वरदान मांगो। तब मैं भरत का राज्याभिषेक खूब आनंद से देख सकूं, नहीं तो भाई जिए मीन मरुबार बिहीना। जल के बिना मछली जी सकती है, मणि के बिना सांप रह सकता है, परंतु राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता। देखो ये राम में प्रेम है, जो गजगामिनी पिक वचनी सुमुखी सुलोचनी क्या क्या बोलते थे दशरथ जी, और जो काम के वशीभूत होकर बोलते थे, वो कहते हैं मैं राम के बिना जी नहीं सकता हूं। ये कहीं नहीं कहा कि केकई मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूं, कहीं नहीं कहा। क्या जीवन राम दर्श अधीना। राजा बेचारे बहुत प्रेम से बोलते हैं, लेकिन केकई बोलती है हा 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 हा, बहुत बोलना आता है आपको, आप तो बहुत ऐसी बात बोलते हो कि भरत को तो राजगद्दी पर बैठाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर दूसरे वरदान को थोड़ा बदलो, रहने दो ये बातें, ये मेरे ऊपर कोई माया चलने वाली नहीं है। या तो आप वरदान दे दो या आप यश ले लो, मुझे ज्यादा ये छल कपट प्रपंच नहीं सुहाता, रोना गिड़गिड़ाना फिर जमीन पर पड़ना ये करना, ये अच्छा नहीं लगता। आप अच्छे हो, राम बहुत अच्छा है, कौशल्या जी बहुत अच्छी है, सबको मैंने पहचान लिया है, और कौशल्या ने तो जैसा काम किया जैसा मेरा भला किया ऐसा मैंने भी उसका भला कर दिया। कल प्रातः काल तक यदि राम यहाँ ऋषि मुनियों का वेश बनाकर वन में नहीं गया तो मैं निश्चित रूप से फंदा खाकर जहर खाकर के मर जाऊंगी और तुम्हारा संसार में बड़ा भारी अपयश होगा। बोलो क्या बोलते हो, ऐसी क्रोध में आकर के बोली। ऐसी कई कुटिल भई उठी ठाडी, मानो रोष तरंगिनी बाढ़ी, जैसे कोई क्रोध रूपी नदी है वो उसमें बाढ़ आ गई हुई। अब नदी आए तो क्या है, पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, पाप होता है ना वो पहाड़ आ गया, भरी क्रोध जल जाए, क्रोध रूपी उसमें जल भर गया। और दोनों वरदान है वो दो तट है, और उसका जो एक त्रियाहट है वो धार है उसमें, और जा कहां रहा है विपत्ति रूपी बरसात, विपत्ति रूपी सागर के अंदर ये नदी जा रही है। राजा पैरों में पड़ गया कि के कई तेरे पैरों में पड़ता हूं, मांग मात अब ही देव तोई, तू मेरे से सिर मांग ले अभी सिर कटा दू, पर राम का विरह मेरे से सहा नहीं जाता, मैं करूं क्या, जैसे कैसे भी तुम राम को तो यहां रख लो और दूसरा कोई भी तुम वरदान मांग लो, ना ही तो जरी जन्म भरी छाती, मेरी जन्म भर तक छाती जलेगी। उसने बार बार राम 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 रघुनाथ रघुनाथ ऐसे दशरथ जी महाराज ने कहे, सारा शरीर बड़ा आकुल व्याकुल हो गया। उस समय ऐसा लग रहे थे दशरथ जी महाराज जैसे किसी कल्प वृक्ष को एक हथिनी ने उखाड़ दिया और नीचे पटक दिया हो, कल्प वृक्ष को ऐसे दशरथ जी महाराज पड़े हुए थे और यूं खड़ी हुई थी। कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। पाठीन बोलते हैं एक मछली विशेष होती है, वो मछली होती है वो पानी के थोड़े से पानी बिना बहुत ज्यादा छटपटाती है, वो ऐसे दशरथ जी की दशा हो गई। केकई कहने लगी क्यों, ये केकई मनऊ घाय मऊ माहुर देई। केकई कठोर वचन बोलती है जैसे वो जहर घाव के अंदर कोई जहर घोल करके पिला रही है उसे। जो अंतवस कर्तव्य रह हुई। यदि आपको यही करना था तो बार बार मांग 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 कहने की क्या जरूरत थी। महाराज एक समय में दो काम आज तक नहीं हुए हो, हंसना भी और गाल भी फुलाना। हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे, गाल फूलेंगे अब हंसा नहीं जाएगा, और हंसोगे तो गाल नहीं फूलेंगे। दान भी देना चाहते हो और शरीर और अपने मुट्ठी में कंजूसी भी रखना चाहते हो, और युद्ध भी आप करना चाहते हो और आप सोचते हो मेरे घाव भी न लगे। ऐसा कभी हो सकता है? एक लुगाई के समान रोने लग गए, मेरी शूरवीरता देखो, मेरी बहादुरी देखो, मैं भी तो वन में भेजने के लिए तैयार हो गई। ओह तानुतीय तनय धाम धनु धरणी, सत्य संध कहूं तीर्ण सम बरणी। बड़े बड़े सत्य संध राजाओं ने अपनी स्त्री को, अपने प्राण को, अपने पुत्र को, अपने राज्य को और अपने धन को और अपनी धरती को तिनके के समान छोड़ दिया। कोई जंगल में चला गया, किसी ने पुत्रों को दे दी, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया। और एक आज आप हैं जो वरदान की पूर्ति के लिए आप पुत्र का त्याग नहीं कर सकते। राजा कहने लगे, अरे केकई तेरा कोई दोष नहीं है, तेरे अंदर कोई पिशाच घुस गया है, कोई भूत प्रेत अंदर घुस गया है और वो भूत प्रेत मेरा काल बन करके और आज इतनी बातें कर रहा है। ऐसा कहकर के आगे कह, हे सूरज भगवान आप उदित मत होना, हो रात भर हम ऐसे ही पड़े न, उदित नहीं होना। चैतन भरत भूपतई भोरे, विधि बस कुमति बसी जिये तोरे, सो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जय विधि बामू। क्या बताऊं मेरे सब पापों का परिणाम तू यहां पर आ गई। मैं तो क्या क्या पता विधाता के बस में ऐसा हो गया कि तेरे जैसी कुमति के बीच में फंस गया। आज विधाता मेरे से विपरीत हो गया, कुछ समय में विपरीत हो गया। देख के कई एक बात कहता हूं, सुबह एक दिन ऐसा आएगा ये अयोध्या तो खूब फलेगी फूलेगी, ऐसे ही कोलाहल होंगे, आनंद होंगे और सब भाई मिलकर के राम की खूब सेवा करेंगे। सारी अयोध्या में राम के गुणगान गाए जाएंगे, राम ही यहां के राजा होंगे। परंतु ये दृश्य मैं नहीं देख सकूंगा और तो वो देखती हुई भी तेरे मुंह के ऊपर लोग थूकेंगे, तेरे ऊपर कलंक रहेगा, ये बात तू मेरी मान लेना। तोर कलंक कर मोर पछताऊ, मुए न मिटे न जाए काऊ, मरते समय तक ये चीज लौटने वाली नहीं है। अब जब तू इतनी बात बोलती है तो अपने उम्र भर तक कभी मुझे मुंह मत दिखाना, जाओ तुम अपना मुंह छिपा के बैठ जाओ। मुझे मालूम है अंत में तुम ऐसा पश्चाताप करोगी, ऐसा पश्चाताप करोगी, मारे सी गाय नहारू लागी। जैसे एक तांत के लिए माने एक नस के लिए कोई गाय की हत्या कर दे, कैसी उसको कैसा पाप लगता, ऐसे तेरे पाप लगेगा। राजा ने खूब इस प्रकार से उसको कहा, पर क्या बताएं उसके तो कुछ असर ही नहीं होता, वो तो मौन होगी ऐसे जैसे कोई मसाणों के अंदर चला जाता है। जगते हुए मसाणों में बैठ करके जो साधना करते हैं मौन रहते हैं और सामने मसाण, ये तांत्रिक ही मलिन तांत्रिक होते हैं, उनके चक्कर में नहीं आना चाहिए, बहुत गंदा करते हैं। तो मुर्दा मर जाता है, सब लोग आ जाते हैं, फिर रात में उसको और ढंग से जगा करके वहां पर प्रेत साधना करते हैं और प्रेत साधना से लोगों के विषय में कई बातें बताते हैं। वो तो कहते कई बातें ठीक हो जाए, वो ठीक नहीं, वो थोड़ा सा ही ठीक होती है, ज्यादा नहीं होती है। एक ऐसा ही प्रेतात्मा को प्रसन्न करने वाला एक आदमी मिला, साधु के रूप में ही था वो। उसने कहा कि मैं अमुक आदमी के लिए कह सकता हूं कि जिंदा होगा कि मरेगा, कैसे बताओगे? केड़ा लाके रखो यहां, केड़ा दे दिया, अब आप सब चले जाओ कमरे से बाहर, सब कमरे के बाहर गए। उसने जाकर क्या किया है? इस केले को आप जो है छीलिए, अंदर से कटा हुआ आएगा तो ये आदमी मरेगा, और एकदम साबत रहेगा तो ये आदमी मरेगा नहीं। उस केले को दूसरों ने छिलके लगाए, देखो कटा हुआ मिला है चक्कू से, और ऊपर एकदम साबत, वो छिलका साबत एकदम। उससे पूछा, तूने क्या किया? उसने कहा, मैंने मेरे प्रेत को बुलाया, और प्रेत ने बुला करके ये कहा, तूने प्रेत की साधना कैसे की? मसाणों में की, रात को 12 बजे से मैं वहां बैठता था, 2-3 बजे तक वहां पर साधना करता था, लेकिन मुझे इतनी सावधानी रखनी पड़ती है, मैंने इतना मेला काम किया और इतनी सावधानी रखनी पड़ती है, जरा सा भी मैं कहीं चूक जाऊं तो लगता है कि मुझे पकड़ लेगा और खा जाए, ये उल्टा मेरा नुकसान कर देता है। फिर उसने खुद ने कहा कि मैं तो सबको यही कहता हूं कि प्रेत साधना से दूर रहना। अस्तु। तो परे उराय कही कोटि विधि, काही करस निदान, कपट सयानी न कहती कछु, जागती मनहु मसान। मानो ये मसान जग रही है और उसमें वो चुपचाप खड़ी हुई हो। राजा की हालत बड़ी खराब, वो सोचते हैं कि हे सूर्य भगवान, आप तो हमारे सूर्य कुल के गुरु हो, आप यदि अयोध्या में सुबह आ जाओगे तो आपको भी इस अयोध्या के वातावरण से बहुत दुख होगा, इसलिए आप आओ ही मत, रात को जितना लंबी करो उतना ही करते रहो। कहके यूं पास में कठोरता से खड़ी रही। अब सुबह तो होना ही होता है, ब्राह्म मुहूर्त के अंदर वीणा बजने लगी, शंख बजने लगे और सब, और आज तो विशेष आनंद आ रहा है, वो सब बजने लगे। राजा ने सब बंद करवाए, और बंद करो, ये बुरा लगा उनको। कैसे? जैसे कोई सती होने के लिए जाती है स्त्री, अपने पति की अर्थी के साथ में सब श्रृंगार करती है, उसका श्रृंगार कितना बुरा लगता है, अखरता है, रोता है, सब रोते हैं, सब प्रकार का आंखों में काजल लगाएगी, चोटी गूंथेंगी, बोरिया लगाएगी, आभूषण पहनेगी, और बड़े पति को अपने साथ में चिता में लेकर के बैठती है, तो उसका जैसे ये श्रृंगार अप्रिय लगता है, ऐसे राजा को बड़ा अप्रिय लगा है। सारी रात नींद नहीं आई। इधर भाई प्रातःकाल हो गया और लोगों की भीड़ आई रनिवास मां राजा के महल की तरफ, परंतु इतनी बड़ी भीड़, गुरुजी आ गए, गुरुजी के साथ में और ब्राह्मण लोग आ गए, सब आए, कहते हैं और तो सब है, अभी महाराज नीचे नहीं आए, महल से क्या बात है, सो गए? सुमंत, देखो हम लोग तो राजा के खास खास महल के अंदर जा नहीं सकते हैं, आप जा सकते हो, आपको अधिकार दिया हुआ है, आप जाइए और जगा के लाइए। क्या बात है, क्या बात है, अभी जाता हूं। अब वो सुमंत जी को मस्ती से गाते गाते जा रहे थे, और जाते गाते गए, और जो राजा के महल में गए तो भाई महल डरावना खाने जैसा लगे, और ये क्या बात है, मुझे महल भोज जैसा प्रिय नहीं मिलता, क्या ऐसे ही कुछ नहीं। ऐसे करते करते जो ही वो महल के खास अंदर गया और जाके कहा, महाराज की जय हो, आज राम के अभिषेक का दिन आ रहा है, महाराज की जय हो, सुमंत राव को प्रणाम करता है। राजा कुछ नहीं बोले, राजा के और ज्यादा आंसू आने लगे, सोच विकल विवरण मही पर, वो जमीन पर गिर गए, खाट से जमीन, पलंग से जमीन पर गिर गए। ऐसा लगने लगा कि जैसे कमल का वृक्ष जड़ से उखड़ गया हो। क्या बात है, सचिव सभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखो ये केकई जो है ना, अब वो बिना पूछे ही कहने लगी, सुमंत जी रात भर महाराज को नींद नहीं आई, परी न राज ही नींद बस नींद निसी। क्यों नहीं आई नींद माता? हे तू जान जगदीश, क्या पता भगवान जाने क्या कारण है, ये तो केवल राम 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 यही रटते रटते सुबह हो गया, और हमने भी कई देर से पूछा, महाराज आपकी विकलता का कारण तो बताओ, आप इतने दुखी क्यों हो महाराज, हमने बहुत पूछा, लेकिन महाराज तो राम राम के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है, तो एक काम करो ना, जल्दी राम को लेकर के आ जाओ, वो आएंगे, उनका तो राम पर जी बहुत है, राम के लिए जीते हैं, राम के लिए मरते हैं, तो राम आएंगे वो उनको उन्हीं को ही बताएंगे। अब ये कोई आपको नहीं बताए, मेरे को बताने से रहे, आपको बताने से रहे, जाओ राम को ले आओ। सुमन जी ने देखा कि बोली में कुछ बनावटीपन है, जिस भाव से बोलती है वैसा भाव तो नहीं है। राम को ये कहती बुला लाओ, इतना ही राम को बुलाना अनिवार्य होता तो महाराज क्यों नहीं बोलते। दशरथ जी की तरफ देखने लगे, इशारा ही करें, बोला तो नहीं जाए। राय रुख जा रही, रुख रुख माने इशारा किया, ये कह रही है कि बुला लाओ। लखी कुचाल कीन कछुरानी, उस केके के राम तो इतने रोने, सॉरी दशरथ जी तो इतने रो रहे हैं, और केके के आंखों में कोई आंसू नहीं, कोई उदासी नहीं, और कठोरता है यूं। आज रानी ने कुछ न कुछ जरूर कोई षड्यंत्र रचा है, क्या करें भाई, अपन क्या करें। अब वो वहां से रवाना हुए, और रवाना होकर के और वो अपने महल से आकर बाहर इधर आए। लोग पूछने लगे, क्या बात है, क्या बात है, महाराज कब आ रहे हैं, सुमन जी क्या समाचार है, क्या समाचार है। बस बस अब राम जी को बुलाने ही जा रहा हूं। तो लोग सब आनंदित हो गए, आह अब ये राम जी को बुलाने के लिए जा रहे हैं, अब राम जी आएंगे और अब अभिषेक हो जाएगा। सब लोग आनंद में डूब गए। जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम, जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
जय सीताराम, सीताराम, सीताराम,
जय सीताराम, श्यामवर रामचंद्र की
जय,
मोर मुकुटवंशी वाले
की जय,
अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज
की जय,
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं